श्रीमद् भागवत सातवां स्कंद द्वितीय अध्याय पहला श्लोक। श्री नारद उवाच भ्रात्र एवं विनिहते हरिना क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यतप्य तृषाशु च। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा, रात्रि जब उसका भाई हिरण्याक्ष एवं इस प्रकार विनिहते मार डाला गया हरिना हरि के द्वारा, प्रौढ़ मूर्तिना वराह के रूप में हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने राजन हे राजन पर्यतप्य पीड़ित रूषा क्रोध से, शूचा शोक से, श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्ध हुए और विलाप करने लगा। तात्पर्य श्लोकोपवाद द्वारा युधिष्ठिर ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा था कि हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद से इतने ईर्ष्या क्यों करते थे। अतएव नारद मुनि ने कथा कहानी बताना शुरू किया जिस प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के दृढ़ वैरी बन गए। हम कुछ श्लोक और पढ़ेंगे आगे के। आह वेदम वृषा पूर्ण संदश्य सज्जन ओपोज्वल भयम चक्षु निरीक्षण ध्रुमंबरम। क्रोध से भरकर और अपने होठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश की ओर देखा तो वह सारा आकाश धूमिल हो गया। इस प्रकार वह बोलने लगा। तात्पर्य, असुर हमेशा की भांति भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं और उनसे शत्रुता रखते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु को मारने और उनके धाम वैकुंठ लोक को नाश करने का विचार किया तो उनके शरीर के उद्वेग थे। अगला श्लोक। अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि और रोषपूर्ण बाहों को दिखाते हुए दिखने में भयानक उसने त्रिशूल हाथ में लिया और अपने एकत्र असुर संगियों से कहने लगा, अरे दानवों और दैत्यों, अरे द्विमूर्ध त्रयक्ष शंबर और शतबाहु, अरे हयग्रीव नंबुची पाप और इलवल, अरे विप्रचिति पुलोमन शकुन और अन्य असुरों, तुम सब जरा मेरी बात और ध्यानपूर्वक सुनो और अविलंब मेरे वचनों के अनुसार कार्य करो। मेरे क्षुद्र शत्रु सारे देवता मेरे परम प्रिय और आज्ञाकारी शुभेच्छा भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवता और असुरों के लिए सदैव समान रहते हैं, किंतु देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया है और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की। तात्पर्य श्लोकोपवाद द्वारा, जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान समस्त जीवों के प्रति समदर्शी हैं। चूंकि देवता और असुर दोनों ही जीव के हैं, दोनों ही जीवात्मा हैं, तो कैसे संभव है कि भगवान एक वर्ग के जीवों का पक्षपात करें और दूसरे से विरोध करें। वास्तव में भगवान के लिए पक्षपात कर पाना संभव ही नहीं है। फिर भी चूंकि देवता और भक्त भगवान के आदेशों का कठोरता से पालन करते हैं, अतः अपनी निष्ठा के कारण वे उन असुरों पर विजय होते हैं जो ये जानते हैं कि परमेश्वर तो विष्णु हैं किंतु वे उनके आदेशों का पालन नहीं करते। भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहने के कारण असुरगण को भी सामान्यतः मृत्यु के बाद सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। हिरण्यकशिपु भगवान पर पक्षपात करने का लांछन लगा रहे थे क्योंकि देवता उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वस्तुतः सरकार की तरह ही भगवान भी तनिक पक्षपात नहीं करते। सरकार किसी एक नागरिक का पक्षपात नहीं करती, किंतु यदि कोई नागरिक नियमों का पालन करने वाला है तो शांतिपूर्वक रहने और अपने असली स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए राज्य से प्रचुर अवसर प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। बहुत प्रसन्नता है श्री श्री राधे राधा राधिका रमण के पवित्र मंदिर में बहुत दिनों के बाद मुझे अनेक अवसर मिला। मैं श्री सुखमणि कृष्ण प्रभु को धन्यवाद फॉर गिविंग मी दिस सर्विस। मैं बहुत दिनों से भ्रमण कर रहा था, कुछ भक्तों के साथ हम हरिद्वार बद्रीनाथ गए थे, उसके बाद और भी कई स्थान, लेकिन जब यहाँ इस्कॉन के मंदिर में आए तो ऐसा लगता है अभी घर वापस आ गए। जहाँ पर शिला प्रभुपाद हैं और जहाँ पर शिला प्रभुपाद के अनुयायी हैं और जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन है, वहीं पर सारे तीर्थ हैं। भगवान स्वयं कहते हैं इस तरह से, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, भगवान का भी ट्रांसफर हो गया। वो कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता योगियों के हृदय में नहीं रहता, लेकिन जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन कर, स्पेशली आज गुरु पूजा में केशव चैंट एंड डांस एंथुजियास्टिक। चलिए, वैष्णव का यही जीवन है, कीर्तन नृत्य और फिर थोड़ा प्रसाद, बस। अगर कीर्तन हो, नृत्य हो, हरि कथा हो तो सारे समस्याओं का हल हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने ये सब इस्कॉन के मंदिरों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया, और ये देखकर खुशी होती है कि यहाँ पर कितना उत्साह है भक्तों में। और आज तो छुट्टी का दिन नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में भक्त भागवत सुनने आते हैं। हमारी प्रगति का यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि हम कितना हरि कथा और हरि नाम के लिए उत्सुक हैं। कलियुग का प्रभाव इसको रोक नहीं सकता, ये तो काल चक्र है, ये तो सृष्टि की शुरुआत से निश्चित है कि सत्युग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग, अंत में कलियुग आना है। भ्रष्टाचार, पाप ये बढ़ने ही हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक भक्तों के समुदाय में हरि कथा और हरि नाम के द्वारा इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इन दो चीज़ों का आश्रय लेते हैं, भगवान की कथाओं को सुनना और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, जप करना, तो उतना ज़्यादा ही हम स्वयं को कल्मश से मुक्त कर सकते हैं। ये वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सत्य कबु नए श्रवणादि शुद्ध चित्त करिय होते। सबके हृदय में कृष्ण भक्ति है, उसको जागृत करना। श्रीमद् भागवत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है क्योंकि ये वास्तव में परमहंस संहिता है, ये परमहंसों के लिए है। लेकिन आप बोलोगे हम तो अभी तक हंस भी नहीं बने, परमहंस की क्या बात है। लेकिन ये भागवत ऐसा पुराण है कि जो व्यक्ति मुक्त पुरुष है उनके लिए भी है, और जो मुक्त नहीं है वो सुन के मुक्त हो जाते। ये दवाई भी है, और जो दवाई पी के ठीक हो गए उनके लिए वो एक मिष्ठान पदार्थ है। जैसे जब भागवत महात्म्य में कथा आती है, आपने शायद सुने कि गोकर्ण, गोकर्ण के भाई का नाम धुंधुका, धुंधुका, यस। तो धुंधुकारी ने बहुत सारे पाप किए थे, और वो कौन सी योनि में गया था, भूत बन गया, भूत भूत योनि में गया। आप में से किसी को दर्शन हुए कभी? काफ़ी कष्टदायक होता। मैं कुछ भक्तों के साथ एक यात्रा में गया था, उसमें एक डिवोटी के शरीर में भूत आ गया। मुरली प्रभु भी थे मेरे साथ, मुरली प्रभु को आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो जप नियम पूर्वक कर रहे थे, इसलिए एक माता जी के शरीर उन्होंने जप करना बंद कर दिया, भूत बहुत पेनफुल होता है, बहुत उसको, क्योंकि वो भूत योनि जो है उसमें शरीर होता ही नहीं है और इंद्र तृप्ति की इच्छा बहुत होती है। तो जब गोकर्ण ने देखा कि मेरे भाई इस प्रेत योनि में है, तो उनको स्वाभाविक दया आई वो जानते थे हरि कथा और हरि नाम से उद्धार हो सकता है, तो उन्होंने एक विशाल कथा का आयोजन किया जिसमें कि सबको बुलाया, विशेष करके अपने भाई जो अभी भूत योनि में थे उनको भी सुनाने का अवसर दिया, क्योंकि कथा तो आत्मा के स्तर पर है। सब कथा सुन रहे थे और धुंधुकारी भी एक पेड़ के डाली के ऊपर बैठकर सुन रहे थे, और क्योंकि उसको इतना कष्ट था दुख था इसलिए वो और ज़्यादा तन्मयता से सुन रहा था, इतने ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। उसके लिए भागवत वॉज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु का प्रश्न। जैसे परीक्षित महाराज, अभी आज मैं शाम को अगर भगवान की इच्छा हुई तो मैं योजना कर रहा हूँ शुक्रताल जाने की, जहाँ पर भागवत बोली गई। तो परीक्षित महाराज जब भागवत सुनते हैं तो वो पूर्ण मग्न हो जाते हैं, उनको पता होता है अब मेरे 7 दिन ही बचे हैं। हमें तो ये भी गारंटी नहीं है कि हमारे पास 7 मिनट हैं कि नहीं, हम ऑलरेडी प्लान बनाते हैं कि अभी 9 बजे प्रसाद लेना है, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, लेकिन कृष्ण के प्लान हमें क्या पता, वी आर ऑल हेल्पलेस। तो 7 दिन कथा सुनने के बाद धुंधुकारी का उद्धार हो गया और उसको ले जाने के लिए एक विमान आया जो उसको वापस भगवत धाम ले। तो बाकी सब जो कथा सुन रहे थे वो कहने लगे, हमने भी कथा सुनी, हमें क्यों नहीं इस विमान में जाने का अवसर मिल रहा है। गोकर्ण ने बताया कि आप भी कथा सुन रहे थे लेकिन उतनी तन्मयता से नहीं, कुछ कथा इसलिए सुन रहे थे क्योंकि कथा के बाद प्रसाद होता है, कुछ कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि जो वक्ता को खुश करने के लिए, कुछ कथा इसलिए सुनते हैं कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में, औपचारिकता के रूप में, लेकिन भागवत ऐसे सुनना चाहिए जैसे परीक्षित महाराज ने सुना, बिल्कुल शरीर मन और वचन से तन्मय होकर। नाम जब भी मैं रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के पास बैठकर, सीनियर भक्तों के पास बैठकर जप कर रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था, वो भक्त जो भगवान के नाम में मग्न होकर जप कर, जो भी चीज़ हम करें कृष्ण भक्ति में पूरी तन्मयता से करना चाहिए क्योंकि उससे हमें पूर्ण लाभ होगा। तो आज जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप हो रहे हैं। नारद मुनि ने पहले वर्णन किया था इसके पहले के कुछ श्लोकों में कि कैसे हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद से शत्रुता करते थे और कैसे अंततः भगवान प्रकट होते हैं प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे थे कि अपने बेटे से क्यों की शत्रुता थी और प्रहलाद महाराज कैसे बड़े भक्त बने, कृपया मुझे ये बताइए। ये पिछला श्लोक था और आज के श्लोक में नारद मुनि जवाब दे रहे हैं और वो कथा बता रहे हैं कैसे भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और कैसे हिरण्यकश्यप का वध किया। वो शुरुआत में बता रहे हैं कि हिरण्याक्ष का वध होने पर उसके भाई हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गए और बड़े क्रोध के साथ यहाँ वर्णन किया गया कैसे जलती हुई आंखों से आकाश को देख रहे थे और उनकी दृष्टि से सारा आकाश धूमिल हो गया था, भयानक दांत उग्र दृष्टि रोषपूर्ण भाव को दिखाते हुए हाथ में त्रिशूल धारण करके। असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति का एक लक्षण है जिसको बहुत क्रोध आता है, काम क्रोध लोभ, और ये क्रोध जो है वो उनकी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं होने के कारण है, उनके स्वार्थ के बाद स्वार्थ की इच्छाओं में बाधा आने के कारण। भगवान गीता में भी कहते हैं काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार दरवाजे। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ रहा है कि मेरे भाई का वध हुआ। अब दिखने में तो ये अच्छे गुण लगता है कि उसको अपने भाई से बहुत प्रेम था, लेकिन ये जो प्रेम है वो कृष्ण भक्ति पर आधारित नहीं था। इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने परिवार सगे संबंधियों से आसक्ति होती है, लेकिन अगर उस आसक्ति का आधार कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो आसक्ति दुख का कारण बनती है। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप का जो क्रोध है वो वास्तव में वो रजोगुण के कारण है, तमोगुण के कारण है, और वो क्रोध से आकाश को देख रहे हैं। तो बताया कि हिरण्यकश्यप की इतनी शक्ति थी कि जब वो राज्य कर रहे थे तो सारा भौतिक प्रकृति को वो अपने कंट्रोल में कर रहे थे। हिरण्यकशिपु को अगर कोई चीज़ नहीं पसंद, मान लो बहुत गर्मी है और हिरण्यकशिपु को नहीं पसंद है, तो बस उनकी आज्ञा से वातमान जो टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल कर लेते बिना एसी के, जस्ट 25 डिग्री, सब कुछ। सब देवता उनके दास बन गए थे, इतनी उसकी शक्ति थी। इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हिरण्याक्ष का आप जानते ही होंगे कि कैसे हिरण्याक्ष ये असुर था, दोनों पूर्वजनों में जय और विजय थे, और हिरण्यकशिपु ये पूर्वजनों में जय और विजय थे। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति से धरती को नीचे रसातल में फेंक दिया था और भगवान वराहदेव प्रकट हुए और धरती को ऊपर उठाने के बाद हिरण्याक्ष का वध किया। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि तात्पर्य में कि भगवान सबके प्रति समान भावना रखते हैं। कोई सोचेगा भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, असुरों को मार रहे हैं, भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, ये क्या समान दृष्टि है? जैसे मैं कहूँ कि मैं सबके प्रति समान हूँ और एक व्यक्ति को मैं मिठाई बांट रहा हूँ और दूसरे को जहर दे रहा हूँ, क्या यह समान दृष्टि है? भगवान के समान दृष्टि का मतलब ये है कि भगवान वही चीज़ करते हैं जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक हो। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सरकार किसी नागरिक का पक्षपात नहीं करती, कुछ करना नहीं चाहिए, कभी कभी करते भी होंगे, लेकिन जो आइडियल सरकार है, देखिए कोई एक नागरिक है जो देश के बनाए हुए विधानों के अनुसार जीवन बिता रहे, उसके लिए सरकार सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, इमारतें, कॉलेजेस, रोड्स, सुविधाएं जो भी आवश्यक है। लेकिन दूसरा नागरिक है जो सरकार के नियम पालन नहीं कर रहा, उसके लिए सरकार जेल का निर्माण करती है। तो सरकार ये इसलिए कर रही है क्योंकि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसके लिए जेल में रहने से उसका शुद्धिकरण हो जाएगा और अंततः तो वो अच्छा नागरिक बन जाएगा। ऐसे भगवान जब असुरों को मारते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, दोनों को उनके कल्याण के लिए करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास दो मरीज जाते हैं। एक मरीज बोलते मुझे सर में दर्द हो रहा है, और डॉक्टर उसको कोई दवा देते हैं कि आप ये दवाई लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, और दूसरा व्यक्ति उसको भी सर दर्द है और डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना होगा। तो पहले व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे भी सर दर्द है, दूसरे को भी सर दर्द है, आप समान दृष्टि क्यों नहीं रखते? तो डॉक्टर समान दृष्टि का मतलब है कि हर व्यक्ति को वो दवाई देना जो उसके कल्याण के लिए लाभदायक है। अगर डॉक्टर को सबको एक ही दवाई देने लगे तो हो गया खत्म। ऐसे भगवान हर जीव के साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक है। इवन भक्तों में भी कई बार सकते कोई भक्त को भगवान बहुत कष्ट दे रहे हैं, जो सिंसियरली जब भी कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, बीमारी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार में झगड़े हैं, और दूसरे भक्त कहते सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो धन साम्राज्य धन धन धान्य से पूर्ण है, ऐसा क्यों? कि भगवान जानते हैं किस भक्त के लिए क्या आवश्यक है। हमारी बुद्धि से ये बात परे है, लेकिन श्रद्धा की आंखों से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो सबके कल्याण के लिए है। और भक्त वो है जो हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद देते हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर ये भजन में बोलते हैं, हे कृष्ण, हे राधिका रमण, हे गोपीनाथ, आप मेरे को मारना चाहो तो मारो, आप मेरी रक्षा करना चाहो तो रक्षा करो, आपको पूरा अधिकार है मेरे ऊपर। इस चेतना को कृष्ण भावना कहते हैं, हर स्थिति में समर्पित होना, कृष्ण आई एम योर्स, मैं आपकी शरण में। भगवान की कृपा दृष्टि का अवलोकन करना, इसके बारे में एक श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद हमेशा कोट करते थे, तत्ते अनुकंप सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृताम विपाकम ऋद्वाग व पूर्वीर विदधा नमस्ते जीवेति मुक्ति पदे सदा। इसका अनुवाद है कि जो व्यक्ति विपत्ति आने पर, दुख आने पर धन्यवाद देता है भगवान को और भगवान से कहता है कि ये मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है, आप मुझे शुद्ध बना रहे हैं, ये मेरे अच्छे के लिए, और हृदय से वचन से धन्यवाद देते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया मुक्ति पदे सदाय भाग, उसका अधिकार है मुक्ति पद या कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो हम पांडवों के जीवन में देखते हैं, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, मतलब इंद्रप्रस्थ पांडवों की भूमि है, यहाँ पर एक वैष्णव के चरण वो पवित्र है, तो यहाँ पर तो पांडवों के चरण और भगवान श्री कृष्ण के भी चरण लगे हैं, तो आप सब पवित्र भूमि में रह रहे हैं, उसको समझना मुश्किल होता है मॉडर्न सभ्यता को देख कर। तो पांडवों के जीवन में देखिए कितने सारे कष्ट हैं, भगवान चाहते तो शुरू से ही उनको मुक्त कर सकते थे, भगवान तो सबके हृदय में है, भगवान दुर्योधन को उसी समय मार सकते थे शुरुआत में, कोई जरूरत नहीं थी इतने बड़े युद्ध की, लेकिन पांडव को कितने कष्ट सहन करने पड़े। यहाँ से थोड़ी दूर मेरठ के पास एक स्थान है, उसका नाम है बरनाला, एक जगह है जहाँ वर्णावत, वर्णावत का मॉडर्न नाम थोड़ा डिफरेंट है, बरनाला इस तरह से कुछ नाम है। आप गए, आप में से कोई भक्त गए हैं वहाँ पर? यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर पांडवों को जलाने का प्रयास किया था लाक्षाग्रह, दुर्योधन और धृतराष्ट्र मिलके है ना पांडवों को बोलते चलो अभी गर्मियों की छुट्टी है थोड़े दिन के लिए, आप घूम के आइए, हमने आपके लिए बहुत सुंदर महल बनाया। पांडवों को थोड़ा संशय होता है लेकिन फिर भी वो जाते हैं, और आप सब कथा जानते हैं कि कैसे विदुर जी मदद करते हैं। विदुर जाति से शूद्र थे लेकिन बहुत बुद्धिमान थे और कृष्ण भक्तों में श्रेष्ठ थे, सबसे छोटे भाई थे लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान को प्रिय थे। तो विदुर ने अपनी योजना से नीचे से एक सुरंग रखी जिससे पांडव वहाँ से बच के निकल गए। तो इसके बाद भी कितने कष्ट, कई दिनों तक घर से दूर रहने के बाद जब वो एक चक्र पहुंचते हैं, कुंती महारानी और पांच पांडव, ये उनके विवाह के पहले की कथा है, और उस समय वो किसी एक ब्राह्मण के घर में ठहरे होते हैं एक चक्र। आप में से कोई भक्त गए हैं एक चक्र? ये नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है जहाँ पर पांडव भी रहे थे। तो एक ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे और अचानक एक दिन देखा ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी है, तो कुंती महारानी ने पूछा कि क्या कारण है? उन्होंने बताया कि ऐसे यहाँ पर एक भयानक असुर रहता है जिसका नाम है कौन था वो बकासुर, यस बकासुर, और ये इतना भयानक है कि ये निर्दोष व्यक्तियों को उठाकर खा जाता है, और इसके डर के मारे हम सब ने मिलकर उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि हम हर रोज़ उसको एक पूरा बैलगाड़ी भरकर प्रसाद भेजेंगे और फिर वो उस सारे भोजन को खा सकता है और जो लेकर आएगा उसको भी खा जाए। इतना कृतज्ञ था वो, जो टिफिन लेकर आ रहा है उसको भी खा जाए। दिस इज हाइट ऑफ मर्सी, ग्रेटफुलनेस। लेकिन भक्तों को ये करना पड़ा क्योंकि नहीं तो वो किसी को भी ले जाता। और आज हमारे परिवार का टर्न है, कल सुबह हमारे में से किसी को जाने, हम तीन ही व्यक्ति हैं, मेरे पति हैं, मैं हूँ और मेरा बेटा है, और मेरे पति बोल रहे मैं जाऊँगा, मैं बोल रही मैं जाऊँगा, बेटा बोल रहे मैं जाऊँगा। तो ये उस समय की बात है, आज होता तो बोलते तुम जाओ तुम जाओ, नहीं उनको पूरा आशीर्वाद देंगे, तुम्हारे नरसिंह प्रेयर बोलेंगे आपके लिए। ये परिवार जीवन का भी प्रेम, आजकल जो भौतिक प्रेम है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लाइफ इतनी फास्ट होती है और सब स्वार्थ इतना बढ़ जाता है, जितना ज़्यादा हम निस्वार्थी होते हैं उतना ज़्यादा हम प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम कृष्ण से प्रेम करते हैं उतना सबसे प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सबके हृदय में है। अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आप मेरे लिए कुछ फेवर कर रहे हैं, मेरे लिए मिठाई रख रहे हैं, मेरे लिए कुछ पैसा दे रहे हैं, तो प्रेम स्वार्थ पर आधारित है। लेकिन अगर मैं इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण है, तो मैं सबसे प्रेम कर सकता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहा गया वो अजात शत्रु, वो दुर्योधन से भी प्रेम करते थे, जिसने उसके घर में आग लगाने का प्रयास किया उससे भी प्रेम करते। ये एक महान वैष्णव का लक्षण। तो जब कुंती महारानी ने सुना तो उन्होंने कहा ठीक है आप चिंता मत करो, हमारे मेरे पांच बेटों में से कोई जाए। नहीं 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 आप तो हमारे अतिथि हैं, आपको हम कैसे बोल सकते हैं। नहीं 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 लेकिन मेरे बेटे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और वो विजयी हो जाएंगे, और मेरे पांच बेटे हैं और आपका एक ही बेटा है, इसलिए आप चिंता मत करो। तो कुंती महारानी पांच पांडवों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये सेवा है, लेके जाना है। जब पता चलता है प्रसाद लेके जाना है तो कौन वॉलंटियर होता है, भीमसेन वॉलंटियर हो जाता है। तो प्रसाद लेके भीमसेन सोच रहे होते इतना ज़्यादा प्रसाद लेके जाना कि थोड़ा लाइट लोड होना चाहिए, नहीं तो रास्ते में रुक के खाने लगते हैं। और आप जानते हैं भीमसेन को बहुत भूख लगती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भीमसेन का एक नाम है ब्रिकोदर, है ना, ब्रिकोदर का मतलब क्या है, शीर थी हमारा सबका वीक उदर होता है, इसलिए हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं। आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे पहली चीज़ वो बोलेगा कि आपको भूख कैसे लगती है, क्योंकि ये एक अच्छे हेल्थ का लक्षण है भूख लगना। तो एनीवे तो भीमसेन, मध्वाचार्य और हनुमान जी तीनों वायु पुत्र हैं। कलयुग में मध्वाचार्य, द्वापर युग में भीमसेन और त्रेता युग में हनुमान जी तीनों बहुत प्रसाद खाते हैं। लेकिन मध्वाचार्य जब यहाँ से उड़पी से बद्रीनाथ गए पैदल चलते हुए, उनको बस में जाने में चक्कर आ जाते हैं आजकल, वो पैदल पैदल गए वहाँ तक। रास्ते में जब लौट के आए तो गोवा गोवा के पास रुके, और गोवा में उनको भूख लगी थी, ब्रेकफास्ट लिया नाश्ता, नाश्ते में 4,000 केले खाए और 30 मटके दूध के। अब हम कर भी नहीं सकते और करें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो भीमसेन ने सोचा कि चलो थोड़ा खाया जाए, वो खाने लगे और इधर ऑफरिंग में लेट हो रहा था। दुर्गा बकासुर प्रभु बहुत नाराज हो रहे थे, वो बड़े गुस्से होके बाहर आए, कहाँ है मेरा भोजन कहाँ है। भीमसेन खाते जा रहे थे, खाते बोले रुक जाओ थोड़ा खा लूँ फिर आपको आपके साथ लड़ूंगा। तो जब आसुर बड़े भयानक लड़ाई करने आए तो भीमसेन, क्योंकि प्रसाद का एक रूल है प्रसाद खाते समय कभी उठना नहीं चाहिए, वो सीनियर ड्यूटी पर प्रणाम करना चाहिए लेकिन उठना नहीं चाहिए। तो भीमसेन खा रहे थे, फिर आसुर आ रहा था, भीमसेन खा रहे थे, लड़ रहे थे एक हाथ से, फिर पूरा खत्म करने के बाद दोनों हाथ से लड़ने लगे और अंधे बकासुर को अंत कर दिया। इधर अर्जुन को जब पता चला, कुंती को चिंता होने लगी कि भीमसेन लौट कर नहीं है, बहुत देर हो गई, शायद कोई असुर से कुछ डर तो नहीं होगा। तो कुंती महारानी ने अर्जुन को बोला जाओ जाओ अपने भाई को मदद करो। तो अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पे एक नागास्त्र छोड़ा, और नागास्त्र जो एक तीर होता है और इसको छोड़ने से नाग प्रकट होता है, एक्चुअल नाग। हम लोग बार कीर्तन कर रहे हैं फिर किसी ने प्लास्टिक का सांप डाला तो सब भाग गए ना। सबसे पहले मैं भाग गया कीर्तन लीडर, कि हमारा विश्वास इतना सुदृढ़ है भगवान पर ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। तो जब अर्जुन ने वो नागास्त्र फेंका तो नागास्त्र पहुंचा वहां पर, इसके पहले बकासुर का अंत हो चुका था और भीमसेन रास्ते में मिल गए अर्जुन को। तब अर्जुन ने उस नाग को आदेश दिया कि तुम यहाँ पर घूम सकते हो क्योंकि अब छूट चुका है, लेकिन किसी को कष्ट मत देना। लेकिन वो नाग बहुत कुछ सालों के बाद निर्दोष व्यक्तियों को काटने लगा। तो द्वापर युग के करीब अंत में पांडवों का राज्य था और पांडवों के जाने के बाद कलयुग प्रकट हुआ। तो कलयुग में 500 साल के बाद नित्यानंद प्रभु जब प्रकट हुए तो नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र में हुआ, और नित्यानंद प्रभु को पता चला ये सर्प अभी भी घूम रहे और ये बहुत वैष्णवों को कष्ट दे रहे। नित्यानंद प्रभु ने अपनी शक्ति से उस अपने पैरों से उस सर्प को जमीन के अंदर डाल दिया। आपने देखा डिफरेंट प्लेस, जब आप एक चक्र नेक्स्ट टाइम आप जाओगे क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने अपने कानों का एक कुंडल लिया और ऊपर से सील कर दिया जिससे वो बाहर नहीं आ सके। आप नेक्स्ट टाइम सब भक्तों को ले जाना वहां, थोड़ा दूर है, करीब 1-2 घंटे का रास्ता है एक चक्र से। मैं मन में सोच रहा था कि मेरे हृदय का मिथ्या अहंकार भी ये सर्प की तरह बार बार कष्ट देता है, भक्ति में नाम जप में यही सबसे बड़ी बाधा है। नित्यानंद प्रभु यानी गुरु के चरण कमल हैं, वो इस मिथ्या अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। तो हम गुरुदेव से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे त्रिनापेक अतिहीना, मेरे को इतना नम्र बना दो कि मैं अपने आप को घास के तिनके से भी तुच्छ मानूं, कोई मुझे कुछ भी कहे बुरा नहीं लगना चाहिए, चाहे वो बोलने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहे हैं, मुझे सोचना चाहिए भगवान मेरे कल्याण के लिए कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर की बेइज्जती की गई, एक व्यक्ति बोलने लगा हरिदास तुम जोर से क्यों भगवान का नाम लेते हो, क्या भगवान को धीरे सुनाई नहीं पड़ता, अभी चतुर्मास से चल रहा है भगवान सो रहे हैं। हरिदास ने विरोध नहीं किया, हरिदास बोले सहन किया, लेकिन बोले नहीं मैं जोर से इसलिए ले रहा हूं कि दूसरों को भी लाभ मिले। तो ये जो सहन करने की शक्ति है ये महानता का लक्षण है। लेक्चर देना तो थोड़े समय के बाद हर व्यक्ति सीख जाता है, थोड़े जोक्स कर लो, थोड़ी श्लोक रट लो, एक्सपर्ट बन जाए, लेकिन सहन करना, नम्र बनना, ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। जो ये कर सकता है वो नोबल लॉरिएट से भी ज़्यादा महान है। जो व्यक्ति बड़े से बड़े कष्ट में भी, दुख में भी सहन कर सकता है, और जो उसके प्राणों का अंत करने के लिए उसको भी प्रणाम कर सकता है, वो महापुरुष है। जैसे हरिदास ठाकुर कितने सहनशील थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब हर स्थिति में नम्र बने रहना। और जीव गोस्वामी को तो उनके गुरु भी परीक्षा लेते हैं, एक बार उनकी गलती नहीं होती उनको डांट देते हैं, बोले नाउ गेट आउट वृंदावन से भाग जाओ, और जीव गोस्वामी सहन करते हैं कि अब मेरे जो भी है भगवान की कृपा है। एक्चुअली रूप गोस्वामी भी उनकी महानता सिद्ध करना चाहते थे। तो हर दिन हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान इन गुणों पर होना चाहिए, क्योंकि भक्ति वास्तव में अंतरंग चीज़ है। बाहर से मैं अच्छा भक्त हूँ, भगवे कपड़े पहने हैं, मैं बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। क्या मैं वास्तव में नम्र बन रहा हूँ, क्या मुझे बहुत खुशी हो रही है दूसरों की प्रशंसा सुन के, क्या मैं हृदय से दूसरों की प्रशंसा स्वयं कर सकता हूँ, क्या मैं भगवान की सेवा के लिए कष्ट देने को तैयार हूँ, क्या मैं वास्तव में भगवान के नाम में मग्न हो रहा हूँ, क्या मुझे नाम में रुचि जागृत हो रही है। एक भक्त रोज इस पर, इन गुणों पर ध्यान करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे पूर्वज आचार्य हैं, वो ऐसे एक भजन में बोलते हैं, कभी हमें बोलो से दिना मार अपराध गुचि शुद्ध नामे रुचि कृपा बल होबे हृदय संचार। कब वो दिन आएगा जब मेरे सारे अपराध दूर हो जाएंगे, मुझे शुद्ध नाम में रुचि। कल मैं पश्चिम बिहार में गया था, एक हमारे एक भक्त राजेश प्रभु जी के यहाँ पे कार्यक्रम था, वहाँ पर कई भक्त बता रहे थे कि हमारे प्रिय रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हरि नाम पे कुछ क्लासेस ले रहे थे, सेमिनार, और भक्तों को बहुत लाभ हो रहा था उससे। एक्चुअली हरि नाम के ऊपर जो सेमिनार्स हैं, हरि नाम कैसे जप करना, ये महत्वपूर्ण है। अगर हरि नाम अच्छा हो जाए तो सब समस्याएँ ठीक हो जाए, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, या मध्यस्थ आश्रम में हो, या वो संन्यास आश्रम, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी मंदिर में हो, सब जगह पर समस्याओं का जड़ है कि कृष्ण भावना की कमी है, और कृष्ण भावना दूर होती है हरि नाम लेने से। तो इस तरह से पांडवों ने, और भी इसके बाद जब वापस लौट कर आ गए, द्रौपदी से विवाह किया, उसके बाद कितनी समस्या, इससे कितना बुरा लगेगा कि अगर किसी की पत्नी कैसे बेइज्जती की जाए। तभी दुष्यंत महाराज सहन कर रहे, फिर उनको 12 साल वनवास में भेज दिया गया तो भी सहन करते रहे। और वनवास के समय जब गंधर्व उनके पास में रह रहे थे, तो युधिष्ठिर का अपमान करने के लिए दुर्योधन वहां पर आए। दुर्योधन चाहते दिखाना चाहते थे, देखो हम राजा के पुत्र की तरह रह रहे हैं, राजा हैं, और आप भिखारी की तरह रह रहे हैं। उसी जगह पर आए और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना दिया। आपको मालूम होगी कहानी, दुर्योधन को बंदी बना दिया, और भीमसेन ने सुना तो बोले हरि बोल वेरी गुड हमारा काम पूरा हो गया वेरी गुड। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने, ये हमारे भाई हैं, जाओ अर्जुन, जाओ इनको मुक्त करो। और अर्जुन ने गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त किया, वो दुर्योधन जो उनके प्राण लेने को तैयार। तो कितने सारे उदाहरण हैं पांडवों के, ये सब कठिनाइयों को सहन किया उन्होंने, और कभी शिकायत नहीं की भगवान से, भगवान आप हमारे मित्र हो, आप क्यों नहीं दुर्योधन का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर देते हो, एक हार्ट अटैक एक बस भगवान कर सकते। बल्कि कुंती महारानी ये सब होने के बाद भगवान को धन्यवाद देती है, विपद संतुष्ट शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कृष्ण ये विपत्ति के लिए धन्यवाद। उसको कभी लगा नहीं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं। हमारे जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती हैं, थोड़ी थोड़ी कठिनाई, अभी तक तो हो सकता है हो भी जाए, टेररिस्ट का जमाना है बोल नहीं सकते, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नहीं है कि घर में आग लगाया हो, है ना, ऐसी स्थिति नहीं है। थोड़े थोड़े विपत्ति आते हैं, कभी किसी भक्त ने कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लग जाता है, लेकिन वास्तव में सोचना चाहिए कि ये मेरे शुद्धिकरण के लिए, आप जब भक्तों के साथ रहोगे ना तो शुद्धिकरण होगा, शुद्धिकरण बाहर से नहीं होगा, दूसरे भक्तों से ही होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते सबसे बड़ी तपस्या है कि भक्तों के साथ रहकर भक्ति करना, यदि हम सब अलग अलग कुटिया बना के रह सकते हैं जैसे प्रभुपाद खुश नहीं होंगे। तो भक्तों के साथ रहने में प्योरिफिकेशन फास्ट होता है, जल्दी शुद्धिकरण होता है। तो कोई बुरा बोल दे या कोई बुरा व्यवहार हो जाए, सुनना चाहिए कृष्ण ने इस व्यक्ति के द्वारा मुझे शुद्ध बनाने के लिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को शुद्ध बनाएं, ये बुरे शब्द कहकर, मैं आपके शुद्धिकरण के लिए बोल रहा हूँ, आई एम एन एजेंट ऑफ कृष्ण, आप मेरी अहेतु की कृपा से मैं कड़वे कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, हमें स्वयं को तृणादपि सुनिच्छे न। इस्कॉन सोसाइटी में इस तरह के भाव होगा तो कितने सारा जगत आकर्षित होगा, और अगर इस तरह का प्रेम नहीं होगा तो लोग आएंगे और फिर चले जाएंगे। कई बार भक्त चले जाते हैं क्योंकि प्रेम की कमी होती है, प्रेम वास्तव में बहुत दुर्लभ है, प्रेम ही है जो भक्तों को बनाए रखेगा। फिलॉसफी से हम अंदर आएंगे कि सुन के कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये दुनिया दुखालय है, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण नाम के रूप में है, लेकिन जब तक भक्तों में प्रेम नहीं होगा तब तक वो एक साथ हम जुड़े नहीं रहेंगे। एक डिवोटी बता रहे थे, लव एंड ट्रस्ट इज लाइक अ ल्यूब्रिकेंट, प्रेम जो है ना एक ल्यूब्रिकेंट की तरह, जैसे कोई यंत्र को चलने के लिए, जब कोई यंत्र होता है, कोई कार या मोटरसाइकिल चल रहे हैं तो उसमें कुछ अंदर पार्ट घिस रहे हैं आपस में, लेकिन अगर कोई अच्छा ल्यूब्रिकेंट है जो जो एक प्रकार का जो क्या बोलते हैं वो ल्यूब्रिकेंट, जैसे हिंदी आप समझ गए, जो हाँ ऐसा पदार्थ जो कि वास्तव में स्नेह प्रेम पैदा करता है आपस में, तो ये बहुत जरूरी है और ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो स्नेह कैसे पैदा होगा, ये तभी पैदा होगा जब पहले कृष्ण से स्नेह होगा। कृष्ण से स्नेह होने पे सबसे स्नेह होना शुरू होता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसके बारे में बताते हैं कि लव ऑफ गॉड के लक्षण क्या है, प्रेम के, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि प्रेम के लक्षण ये है कि भक्तों में मित्रता की भावना जागृत होना और बद्ध जीवों के प्रति दया की भावना होना, ये दो लक्षण बताते हैं। ये एडवांस डिवोटी जो भक्ति में आगे बढ़ता है वो सबके प्रति दया भावना रखते हैं, विशेष करके जो कृष्ण भक्ति में अभी तक आए नहीं हैं उनके प्रति जीव दया, और दूसरा जो भक्तों के साथ रह रहे हैं उनके प्रति प्रेम। और प्रेम के लिए थोड़ा त्याग भी आवश्यक होता है। प्रेम में जब प्रेम का अर्थ है कि दूसरों के लाभार्थ अपने स्वयं के सुख को त्याग करना, जैसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले प्रेम। जो स्वयं के अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो काम है, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं वो प्रेम है। तो इस दुनिया में प्रैक्टिकली भक्ति को छोड़कर, भक्तों को छोड़कर सब काम में आ सकते हैं। जैसे मैं अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, भाई मेरे लिए कर रहे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं, दिखने में प्रेम लग रहा है कि मेरे भाई का वध किया, क्यों किया, मैं बदला लूंगा, लेकिन वो कृष्ण को आधार में नहीं रख रहे, वो समझ नहीं, कृष्ण को सेंटर में नहीं रख रहे, इसलिए हिरण्यकशिपु के जो वाक्य हैं वो प्रेम का लक्षण नहीं है, वो कामनाओं का, काम और क्रोध का लक्षण। और भक्तों में जो व्यवहार है वो निस्वार्थ होता है, भक्तों में सेवा की कोई बदले में अपेक्षा नहीं होती। जैसे यहाँ पर भक्त हैं हर साल पुस्तक वितरण कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में रिकॉर्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर वर्ष, तो बदले में कोई अपेक्षा नहीं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इनाम मिलेगा, मुझे कुछ पर बुक कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ, तो निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ निस्वार्थ सेवा है। तो निस्वार्थ सेवा के द्वारा भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ऐसा उदाहरण है कि कैसे एक भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए कष्ट सहन करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी धाम में रह रहे थे। महाप्रभु दिन के समय जगन्नाथ मंदिर में जाते थे और जगन्नाथ का दर्शन करते थे, और रात के समय अपने कमरे में बंद रहते थे और बंद होकर भी कृष्ण का नाम पुकारते रहते थे। उनका शरीर भाव के कारण कभी कभी कछुए की तरह बन जाता, कभी कभी वो रोते थे, कभी कभी वो अपने मुंह को दीवारों से रगड़ते, आंखों में आंसू आने लगते। तो उनके एक विशेष सेवक थे, इसका नाम था गोविंद, और गोविंद की सेवा थी भगवान के लिए प्रसाद ले आना, भगवान का पैर मसाज करना, और इस तरह से एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर से लौट के आए और सब भक्तों के साथ प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद महाप्रभु विश्राम करते थे करीब आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए। तो महाप्रभु रोज अंदर जाते थे विश्राम करने के लिए, और गोविंद जो महाप्रभु के सर्वेंट थे उनकी सेवा थी पैर मसाज करना। तो गोविंद जब आए तो देखा, अरे आज तो भगवान दरवाजे के पास ही सो गए, अगर मुझे पैर मसाज करना है तो मुझे उनको लांग के जाना होगा जो अपराध है। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु एक पास हो, थोड़ा तो साइड में हट जाइए। प्रभु कहे शक्ति नाही अंग चलाई ते, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। जो भगवान सर्वशक्तिमान है बस लीला कर रहे हैं कि मेरे अंदर अंग चलाने की शक्ति नहीं। जब गोविंद ने बार बार निवेदन किया तो प्रभु बोले मैं नहीं हिला सकता। गोविंद बोले प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए बोल रहा हूँ, मुझे पैर मसाज करने। प्रभु कहे कर न कर, जय तुम्हारा मन हरे, अब करो या नहीं करो, मैं हिलने वाला नहीं, हरे कृष्ण। अरे महापुरुष हो गए। तब गोविंद ने क्या किया, एक छोटा सा कपड़ा लिया, भगवान के ऊपर डाल दिया चादर, चादर डालकर नियमों को भंग करते हुए अपने स्वयं के आध्यात्मिक जीवन को जोखिम में डालते हुए छलांग लगा के दूसरी ओर गए और पैर मसाज करने लगे, और फिर कमर, पैरों के बाद फिर कमर को मसाज किया, पीठ को, महाप्रभु की थकान को दूर हो गई, महाप्रभु का अच्छा विश्राम हुआ। 45 मिनट के बाद महाप्रभु उठे और गोविंद को देखकर क्रुद्ध हुए, थोड़ा गुस्से हुए। आज केन एतचन आछी बसी, आप तो रोज मसाज करते हो, तो मसाज करने के बाद आपको जाना होता है, फिर इतनी देर क्यों बैठे रह गए तुम यहाँ पर? मेरे सो जाने के बाद तुम्हारी सेवा, तुमको जाना चाहिए, स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तुमने प्रसाद भी नहीं लिया अभी तक, क्या कारण है? गोविंद ने जवाब दिया, आप दरवाजे के पास लेटे हुए थे, मैं कैसे जा सकता था। महाप्रभु बोले, प्रभु कहे तुम्ही भीतरे केमने आई ला, हाउ डिड यू कम इन, आप अंदर कैसे आए? तैचे केने प्रसाद लेते ना केला, जिस तरह से आए थे उस तरह जाना चाहिए था। और गोविंद मन में सोचने लगे, मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना है, मैंने अंदर आके छलांग लाके अपराध किया, आपकी सेवा के लिए मुझे नरक भी जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं केंद्रित तृप्ति के लिए मैं नियम को भंग नहीं करूंगा। वैसे वो बोला नहीं, मन में सोचा, और इस तरह से उन्होंने दिखाया कि कैसे एक भक्त भगवान की सेवा के लिए कठिनाई लेता है, कष्ट लेता है। शायद हमारा व्यवहार बिल्कुल इसका विपरीत हो सकता है, मुझे कोई सेवा के लिए जाना है, ताला लगा हुआ, बोले प्रभु क्या करे ताला लगा, लेकिन प्रसाद रूम है उसमें ताला लगा है तो हम किसी न किसी से खोल देंगे। तो ये व्यक्ति के इच्छा पर है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो भक्त वो है कि कभी कभी भगवान की सेवा के लिए नियम भंग भी हो, मुझे नरक में भी जाना पड़े कोई बात नहीं, भगवान की सेवा के लिए। जैसे गोपियाँ हैं, चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, ब्रज की गोपियाँ, आराध्य भगवान ब्रजेश कन्हैया, सबसे ज़्यादा आराध्य, सबसे जो पूजनीय भगवान है ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमन है, तद धाम वृंदावन, उनका धाम वृंदावन, रम्य क्वाचित उपासना ब्रज वधु वर्गे न यो कल्पित। और पूजा किसकी करनी है? ब्रज गोपियां, सबसे हाईएस्ट पूजा उनकी है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये गुण है। जब कृष्ण को सर दर्द हुआ, अपने कहानी सुनी है, जब कृष्ण को सर दर्द हुआ, नारद मुनि से कहा कि मेरा सर दर्द एक ही तरीके से दूर हो सकता है, वो क्या है? भक्तों के चरणों की धूल। कृष्ण के लिए क्रोसिन माइसिन काम नहीं करता, सिर्फ भक्तों की धूल। नारद मुनि सब जगह पर जाते हैं लेकिन कोई तैयार नहीं होता। भगवान को चरणों की धूल देना मतलब नरक जाना, लेकिन गोपियां तैयार हो जाती, जितना ले जाना ले जाओ। क्यों? आपको पता है नरक जाना पड़े, कोई बात नहीं। कृष्ण को अगर एक क्षण सर्वदा दूर होता है और हमको अनंत काल नरक में रहना पड़े तो कोई बात नहीं। तो ये भक्त के लक्षण है। जैसे हमारे फाउंडर आचार्य श्री प्रभुपाद, कैसे उन्होंने कष्ट लिया भगवान की सेवा के लिए। प्रभुपाद, आपने शायद वो सीरियल देखा है, अभय चरण सीरियल, जो भक्ति चारू महाराज ने एक सीरियल बनाया प्रभुपाद के लाइफ के ऊपर। तो मैं कुछ दिन पहले वो देख रहा था कि कैसे प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जाने के लिए टिकट मांग रहे हैं सुमति मोराडी से, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के चेयरमैन है। तो माता जी बोलते हैं, स्वामी जी आप वहाँ जाओगे तो वहाँ कुछ खाने को भी नहीं है वेजिटेरियन, और इतनी सर्दी होगी, आप जाओगे और मर जाओगे, उससे अच्छा आप यहीं पे रहो। प्रभुपा जी बोले, मैं नहीं जाना चाहता। तो बोले, नहीं मैं आपको नहीं भेज सकती, आप मेरे पिता के समान हो, मैं नहीं चाहती कि यार मेरे पिता ऐसे विदेश जाएं बिना किसी सहायता के। प्रभुपाद का कोई असिस्टेंट भी नहीं था। जैसे उम्र बढ़ती है तो इवन ब्रह्मचारी भी सोचते हैं कोई असिस्टेंट साथ में हो, सन्यासी का भी असिस्टेंट होता है। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में कोई असिस्टेंट नहीं, कोई दवाई देने के लिए नहीं, कोई कुछ भी नहीं। प्रभुपाद जी को उन्होंने मना कर दिया कि अगर आप मेरे पिता के समान हो, मैं अपने पिता को मरने के लिए नहीं भेज सकती। तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए, बोले आप क्या अपने पिता के लिए कोई एक कोने में बैठने की जगह नहीं दे सकते? कोई माल जहाज में जिसमें गुड्स भेजा जाता। सुमति मोरारजी ने फिर दे दिया टिकट। प्रभुपाद जी माल जहाज में गए, जनरली माल जहाज में जाना कोई बड़ा प्रेस्टीज की बात नहीं होती। मैं भी अमेरिका गया था जब पढ़ाई के लिए, तो मैं तो विद्यार्थी था, फिर भी एक अच्छे एयरक्राफ्ट में एयर इंडिया में गया, है ना, जो कुछ कोई भक्ति भी नहीं थी उस समय और नहीं है। इतने बड़े महान भक्त वो माल जहाज में जा रहे हैं, माल जहाज में जाना कौन पसंद करेगा? क्यों? भगवान ने उनको एक भगवान के लिए चार्टर्ड फ्लाइट भेज सकते थे। यहाँ के देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइट होता है, राइट? क्या नाम है, मनमोहन, किसी का मन होते नहीं है नाम मनमोहन होता है। ये प्रेसिडेंट वगैरह ये भगवान के सामने क्या है? प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद की स्थिति देवताओं में भी पूजनीय है। प्रभुपाद एबे यश भूषक त्रिभुवन, और ऐसे महान भक्त के लिए एक हेयर टिकट का भी, एक इकोनॉमिक क्लास का भी टिकट भगवान नहीं भेज सकते थे? क्या भगवान इतना भक्त के लिए नहीं कर सकते? क्यों भगवान ने उनको इतनी कठिनाइयों से गुजारा? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि मेरे भक्त कितने मेरे लिए कष्ट उठाते। और इससे प्रभुपाद जी की महिमा और फैल गई। प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ पे कोई कीर्तन पार्टी भी नहीं थी, कोई गार्लैंड लेके भी नहीं खड़ा था प्रभुपाद के लिए। प्रभुपाद को पता नहीं था अभी राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है। वो किसी बटलर में किसी फैमिली के यहाँ रहे, अग्रवाल, सैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, उनके फ्रिज में नॉन वेजिटेरियन फूड पड़ा है। कितना कठिनाई ऐसे एक महीने वहाँ पे रहे। अब प्रभुपाद जी को तुरंत सफलता नहीं मिली, 1 साल के बाद सफलता मिलना शुरू। तो हमारे भी वैयक्तिक जीवन में जो भी छोटी मोटी कठिनाई आए, समझे कि कृष्ण कितने दयालु हैं, मुझे थोड़ा सा एक झलक दिखा रहे हैं जिससे मैं भी शुद्ध हूँ। अंत में भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है जिसमें बोलते हैं, तुम्हारे सेवा ते जई ते दुख सही तो परम सुख। आपकी सेवा में जो भी कष्ट आए वही परम सुख है। तो आप किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ या ब्रह्मचारी या संन्यास, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन हमें धन्यवाद देना है कृष्ण को, कृष्ण आप कितने दयालु हो, आप मुझे धीरे धीरे तैयार कर रहे हो अंतिम यात्रा के लिए, इसे अंत समय में मैं गा सकूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार प्रभुपाद जी किसी ने तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुण कैसे आएगा सहनशीलता का। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये गुण के लिए अलग से प्रयास नहीं करना, अगर हम अच्छी तरीके से नाम जप कर सकते हैं तो ये गुण भी आ जाता है। हरे कृष्ण, मैं आप सबके चरणों में भिक्षा मांगता हूँ कि मैं शुद्ध नाम ले सकूँ। शुद्ध प्रे एट द फीट ऑफ द वैष्णवस, वैष्णव के गुरु की कृपा से ही हम हरि नाम ले सकते। नहीं तो हरि नाम लेना, हरि नाम कोई भौतिक चीज़ नहीं है, हरि नाम गुरु की कृपा से ही। कोई कमेंट्स रुक्मिणी? कोई प्रश्न है या कुछ टीका? कलयुग बहुत अच्छा है क्योंकि यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कलयुग में फिर से आते हैं जगाई मधाई के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जगाई मधाई को तुरंत कृष्ण प्रेम देते हैं। जगाई मधाई ने कोई संडे फिस्ट प्रोग्राम ही नहीं अटेंड किया था। दे गॉट इंस्टेंट लव फॉर गॉड। और जो जगाई मधाई को कृष्ण प्रेम मिला ये समाचार यमराज को मिला, और यमराज आश्चर्यचकित हो गए। उसने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उसका नाम था, हाँ सब जानते हैं क्योंकि आप सब जा चुके हैं वहाँ पर, मैं भी चित्रगुप्ता से पूछा कि जगाई मधाई का रिकॉर्ड बताओ। चित्रगुप्ता बोले, महाराज असंभव कार्य करने के लिए क्यों बोल रहे हो आप, हमने 100 क्लर्क रखे हैं जो जगाई मधाई का रिकॉर्ड रखने के लिए फुल टाइम, और 100 क्लर्क इतने तंग आ गए बोले हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन ये नौकरी नहीं करेंगे। और वो सारे पापों की राशि, जगाई मदाई के सारे पाप चैतन्य महाप्रभु ने एक राई के दाने के समान बना दिया, उसको उठा के समुद्र में फेंक। सुन के यमराज प्रभु बेहोश हो गए। अब सारे देवता परेशान, यमराज के होते हुए इतने पाप होते हैं, यमराज नहीं होंगे तो क्या होगा। तब सारे देवता ब्रह्मा शिव नारद अग्नि वायु सब आए और जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यमराज भी कीर्तन उठ के कीर्तन करने लगे, ब्रह्मा शिव जी नाचने लगे। चैतन्य भागवत में बताया गया कि शिव जी इतने एक्सटेसी में आ गए तो पता नहीं चला उनके वस्त्र गिर गए। और कार्तिकेय और गणेश देखे पापा डांस करें तो वो भी डांस करने लगे। उसके बाद इंद्र चंद्र डांस करने लगे, और गरुड़ जी और अनंत शेष, जनरली गरुड़ और सांपों की दोस्ती नहीं होती क्योंकि सांप गरुड़ जी को देखकर डर जाते हैं, और गरुड़ जी सांप को देखकर वही बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं, महाप्रसाद है गोविंद है। तो गरुड़ जी और सांप मिलकर डांस करने लगे, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से एक ही शब्द निकल रहा था। सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे थे, वो भी कीर्तन में थे, वो एक ही शब्द बोल रहे थे, वो बोल रहे थे जगाई मधाई जगाई मधाई जगाई मधाई की जय हो। तो ये हम जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का पढ़ते हैं यही जगाई मधाई का, हमारे लिए एक ही आशा है। जैसे हमने एग्जाम में अच्छा नहीं लिखा, बहुत गलतियाँ हुई, और पता चला कोई एक विद्यार्थी जो कभी कॉलेज गया ही नहीं था वो भी पास हो गया, फिर हमें आशा हो जाती है चलो हम भी पास हो सकते हैं। तो जगाई मधाई की लीला जो है हमारे लिए आशा देती है कि यस नित्यानंद प्रभु इज सो मर्सीफुल, गौरंग महाप्रभु उनकी कृपा ही है सब भक्ति का साथ, वो कृपा श्रील प्रभुपाद जी बांट रहे हैं। एक भक्त ने बहुत सुंदर व्यास पूजा ऑफरिंग दिया था कुछ साल पहले कि नित्यानंद प्रभु ने एक जगाई मधाई का उद्धार किया, लेकिन प्रभुपाद ने वही नित्यानंद कृपा को लेकर कितने लाखों जगाई मधाई का उद्धार किया। बम्बई के जगाई मधाई सामने मिल रहे हैं, दिल्ली के जगाई मधाई, अमेरिका जगाई मधाई, ऑस्ट्रेलियन जगाई मधाई, वी आर सो ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। और वो कृतज्ञता कैसे बताना है, उनके नाम प्रचार करके। जैसे यहाँ दिल्ली में कितना, मैं 2 दिन ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में था, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कितना हरि नाम फैल रहे हैं। और इस संडे को द्वारका मंदिर का उद्घाटन है इस संडे, उसके बाद फिर वहाँ पे सामने मैं देख रहा हूँ रोहिणी, सो मेनी टेम्पल्स कमिंग अप। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है जो शिला प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधि और आप सब वितरित कर रहे हैं। हर क्षण हर समय यही गाते रहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधिका राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय। इस्कॉन पंजाबी भक्त पुत्रविंद की जय।